ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कल हमने आपको भागवतम के 11वें स्कंद का एक प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर सुनाया था, जिसमें यह स्थापित हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। आज हम आपको भागवतम के 7वें स्कंद का एक श्लोक सुनाएंगे, जिनका उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, जिसमें ये भाव प्रकट होता है कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, पर प्रकट हुए हैं भक्त के रूप में। तो आज की क्लास, जैसे मैंने कहा, मुझे 9 बजे तक समाप्त करना है क्योंकि एक मीटिंग है। तो सिर्फ हम संस्कृत पढ़ेंगे, वो सीधा शब्द अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सत्यम नहीं नहीं आई एम सॉरी ये है भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 38th श्लोक
ऋषि
देवा जसावतारे लोकं बावयासी हंसी जगत प्रतिपं धर्म महा पुरुष पाशी युगानुव्रत छन कलो यपवा श्रीयुगा स्वाम शब्दार्थ
इथम इस प्रकार ने यथा मनुष्य यथा कृष्ण तथा रामचंद्र तिर्य जलचर जैसे मछली तथा कछुआ अवतार ऐसे विभिन्न अवतारों के द्वारा लोकान सारे लोकों को विभावयसे रक्षा करते हो हंसे कभी कभी मारते हो जगत प्रतिपान इस संसार में बाधा उत्पन्न करने वाले को धर्मम धार्मिक सिद्धांतों को महापुरुष हे महान पुरुष पासे रक्षा करते हो जुगानुवृत्तम विभिन्न जुगों के अनुसार छन्नह ढका हुआ कलवो कली युग में यत क्योंकि अभव हुए हैं भविष्य में होंगे त्रिजुग त्रिजुग नामक अथ अतेव सह वही पुरुष त्वं तुम। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार हे प्रभु, आप विभिन्न अवतारों में मनुष्य पशु ऋषि देवता मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा असुरों का वध करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं किंतु कली युग में आप अपने आप को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रिजुग कहलाते हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा। इस प्रकार हे प्रभु, आप विभिन्न अवतारों में मनुष्य पशु ऋषि देवता मत्स्य कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा असुरों का वध करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कली युग में आप अपने आप को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रिजुग कहलाते हैं, अर्थात तीन युगों में प्रकट होने वाले भगवान। तात्पर्य, जिस प्रकार मधु तथा कैटभ के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वे परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कली युग के पतित जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। युग चार है, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली युग। कली युग को छोड़कर शेष तीन युगों में भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं, किंतु कली युग में यद्यपि चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में प्रकट हुए, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उल्टे ही जब जब उन्हें कृष्ण के समान संबोधित किया गया, तब तब वे अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। वे जानते थे कि कली युग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतएव वे अपने आप को भगवान कहने से कतराते रहे। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भागवतम में 11.5.32 में चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया गया है। कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम जगई संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कली युग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है, वह सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है।
ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं कावितामेन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वाहा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरुन् साद्वैतं सवधूतम् कृष्णा चेतन्य देव श्रीराधा कृष्णा प्रदान सहजना ललिता श्री विशाखानंदम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशम राधाकांत नामस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते नमामि भगवते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धाम त्रियाग देव जस अवतारे लोकन विमायासी हंस जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुषा पशाई युगानुव्रतम जना खलो यद अभवस युगो सासत्व। जैसे मैंने कहा, ये श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज जी कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज इस श्लोक में ये स्थापित कर रहे हैं कि भगवान अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भौतिक दृष्टि से कई बार हम समझ नहीं सकते भगवान परशु के रूप में कैसे प्रकट होते हैं, नरसिंहदेव भगवान के रूप में कैसे प्रकट होते हैं, आधे पुरुष आधे पशु, पर भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो यहां प्रहलाद महाराज स्थापित कर रहे हैं कि आप अनेक रूपों में प्रकट करते हो और असुरों का वध करते हो, और आप प्रकट होते हो किस लिए? धर्म की सुरक्षा के लिए। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्मांत्यु भगवत परिणाम। भगवान की वाणी को हम धर्म मानते हैं, ये नहीं कि आप अपना उपदेश दो और कहो ये धर्म धर्म है। धर्मांत्यु साक्षात भगवत परिणाम, तो जो भगवान की वाणी है उसे धर्म मानते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं भक्तों की सुरक्षा के लिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि भगवान नरसिंहदेव जी के रूप में प्रकट हुए किसकी सुरक्षा के लिए? तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं कि जैसे नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार परम भगवान कलयुग में प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए हैं किस लिए? किसकी सुरक्षा के लिए? कलयुग की प्रजा की सुरक्षा के लिए। क्योंकि भगवान की सदा ये चिंता रहती है कैसे लोगों का उद्धार होगा। चैतन्य महाप्रभु जी रोज जाते थे हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए। हरिदास ठाकुर वैसे तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, पर उनकी इच्छा थी कि पतित स्थिति में जन्म लिया जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब एक समय भगवान की परीक्षा ली ये देखने के लिए कि भगवान की दिव्य शक्ति कितनी प्रभावित है, तो उन्होंने ग्वालों को बछड़ों को छुपा दिया था, सिला दिया था। पर उन्होंने देखा कि एक साल के बाद भगवान ने अपना विस्तार करके अपने आप को प्रकट किया था इन ग्वालों और बछड़ों के रूप में। और फिर ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण भगवान कौन है? स्वयं भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर स्तुतियों द्वारा भगवान की प्रशंसा की और ये प्रार्थना प्रकट की थी कि मुझे भविष्य में ऐसा जन्म देना जहां मेरे में किसी प्रकार का अहंकार नहीं आए। और फिर वो जन्म दिया उन्होंने हरिदास ठाकुर के रूप में। तो हरिदास ठाकुर वैसे तो जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनका जन्म हुआ था मुसलमान कुल में। हरिदास की बात छोड़ो, रूप सनातन गोस्वामी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, हालांकि उनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण खानदान में, क्योंकि उन्होंने मुसलमान राजा के पास नौकरी की थी इसलिए वो स्वयं अंदर नहीं गए कभी दर्शन के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी हरिदास को मिलने रोज आते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु गए हरिदास को मिलने, उन्हें हरिदास से कहा, हरिदास ये बताओ ये यमनों मृक्षों का उद्धार कैसे होगा? और हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करिए, हे भगवान आप चिंता मत करो, हा राम बालिक है नाम अभ्यास है, अगर अपराधों से रहित हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो फिर उनका उद्धार हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान की चिंता रहती है किस प्रकार पतितों का उद्धार होगा, और जो भगवान के भक्त हैं उनकी भी यह चिंता रहती है जैसे नामाश्रानिया में संतों की सभा चल रही थी और संतों का विषय क्या था कि इस प्रकार कलयुग में लोगों का उद्धार होगा। उन्हें अपने उद्धार की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि इस प्रकार भविष्य में कलयुग में लोगों का उद्धार होगा। तो उसी भाव को प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रकट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए कलयुग की पतित प्रजा का उद्धार करने के लिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करम रहे तुम बिना के दयालु जगत संसार है। आप पतित पवन हेतु तवा अवतारा, आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि आप अलग अलग समय में अनेक रूपों में प्रकट करते हो, कई बार पुरुष के रूप में, कई बार पशु के रूप में, असुरों का वध करने के लिए, भक्तों की सुरक्षा करने के लिए। पर कलयुग में आप ये घोषित नहीं करते कि मैं स्वयं भगवान हूं। इसलिए भगवान के अनेक नामों में एक नाम है त्रियुग। दूसरे युगों में तो भगवान घोषित करते हैं पर कलयुग में प्रकट होते हैं भक्त के रूप में। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है छना कलो यद अभवस्त युगा तस्वत्वम। छना युगा मतलब का अर्थ है आप भगवान हो पर ढके हुए भगवान हो। दूसरे शब्द में भगवान हो पर ये घोषित नहीं करोगे कि आप भगवान हो। तो कल हमने इस विषय की चर्चा की थी और आपको भगवान की बाल लीला का वर्णन भी किया था जिसमें भगवान ने अपना दैवीय रूप भी प्रकट किया था। भगवान जब प्रकट होते हैं तो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। अद्भुत लीला का भाव क्या है कि भविष्य में अगर कोई ढोंगी व्यक्ति आए तो आप उसकी परीक्षा ले सको। एक समय एक ढोंगी व्यक्ति मेरे से कह रहा था आप लोग कृष्णा में इतना विश्वास करते हो पर हम सब कृष्णा हैं। तो हमने कहा कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए उन्होंने तो अद्भुत लीला प्रकट की थी और मैंने इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया। तो मैंने उनसे पूछा आप इनमें से किसी लीलाओं की नकल कर सकते हो? कहता है आज नहीं कर सकते तो इसका यह अर्थ नहीं कि कल नहीं कर सकेंगे। तो ये है हमारे ढोंगी अवतारों का भाव कि हम कल नकल करेंगे भगवान की लीलाओं का। प्रभुपाद जी कहते थे जैसे विज्ञानी हमें पोस्ट डेटेड चेक देते जाते हैं कि लिखेंगे आपको हम 10 लाख रुपए दे रहे पर कब 200 साल बाद। तो भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी अद्भुत लीला भी साथ में प्रकट करते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु ने अनेक स्थानों में अद्भुत लीला प्रकट की और कल हम सर्व भट्टाचार्य का भी की चर्चा हमने की थी कि किस प्रकार संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु गए जगन्नाथ मंदिर में जहां भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लेते ही भक्ति भाव से बेहोश हो गए। किस प्रकार उन्होंने सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और अंत में सर्वभौम भट्टाचार्य को अपना सद्भुज का रूप प्रकट किया जिसके द्वारा सर इनके मन में कोई शंका नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। तो चैतन्य सर्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य और भक्तों से कहा कि मैं अभी दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता हूं और दक्षिण भारत की यात्रा करने से पहले 1510 में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और दक्षिण भारत की यात्रा की जिसमें उन्होंने 4000 मील की यात्रा की। पर दक्षिण भारत जाने से पहले एक समय महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे तो उनका बुद्धिस्ट भक्तों से परिचय हुआ, तो महाप्रभु ने बुद्धिस्टों का जो सिद्धांत है ये स्थापित किया कि गलत है, और बुद्धिस्ट भक्तों ने बड़ा अपमान महसूस किया और फिर कहा कि ये योजना बनाई उन्होंने कि इसका बदला लिया जाए। तो बदला लेने के लिए क्या किया उन्होंने, एक पीतल की थाली में उन्होंने सड़ा हुआ भोजन रखा और महाप्रभु के पास गए ये कहते हुए ये महाप्रसाद है, ये हम आपके लिए ला रहे हैं। जैसे वो प्लेट में थाली में महाप्रसाद की थाली सड़ा हुआ खाना था, पर वो कह रहे थे महाप्रसाद, जैसे ये थाली अर्पण कर रहे थे महाप्रभु को, एक बाज आई ऊपर से, बाज ने वो थाली उठा ली, वो जो सड़ा हुआ खाना था वो फेंक दिया बुद्धिस्ट भक्तों के ऊपर और ये थाली को उन्होंने गिरा दिया, बाज ने ये थाली गिरी उनके गुरु के माथे पर। जब वो थाली गुरु के माथे पर गिरी और साइड से गिरी फेजी के साथ, गुरु जी भी होश हो गए। तो सारे जो शिष्य थे गुरु जी के सब घबरा गए, उन्हें लगा कि गुरु जी अब तो मरने वाले हैं। तो सबने स्वीकार किया महाप्रभु से, हमें माफ कर दो, हम दोषित भाव से आए थे, हम आए थे आपका अपमान करने के लिए, और वो सड़ावा प्रसाद खाना था, महाप्रसाद नहीं था, हमने आपको झूठ बोला, कृपा करके हमारे गुरु जी को बचाइए। तो महाप्रभु ने कहा अगर तुम चाहते हो अपने गुरु को बचाने के लिए, जाओ गुरु के कानों में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो। तो वो गए गुरु के कानों में, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पूरा महामंत्र सुनाया। जैसे गुरु ने महामंत्र सुना होश में आ गए, और सारे भक्त जो बुद्धिस्ट थे सब क्या बन गए, वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने हर प्रकार के व्यक्ति को प्रभावित किया वैष्णव सिद्धांत के प्रति। चैतन्य महाप्रभु जैसे हमने कल आपको समझाया था, छोटी आयु में ही बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान बन गए थे, उन्होंने एक संस्कृत का पाठशाला भी खोला था, और उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध पंडित केशव कश्मीरी को भी हरा दिया था फिलोसफिकल सिद्धांत के डिस्कशन में। तो पूरे भारत में लोगों को सूचना थी कि महाप्रभु बड़े विद्वान हैं। तो जा रहे थे बनारस से गुजरते हुए वृंदावन में, और बनारस में जब पहुंचे उस समय मायावती सन्यासी की एक सभा चल रही थी जिसमें प्रकाशानंद सरस्वती और 10,000 उनके सन्यासी शिष्य 10,000 वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। महाप्रभु जब वह पहुंचे वाराणसी में तो अपने भक्त तपन मिश्रा चंद्रशेखर के स्थान में रह रहे थे, और इन भक्तों ने कहा हम आपकी बेइज्जती सह नहीं सकते, ये जो मायावादी सन्यासी हैं ये सदा आपकी निंदा करते रहते हैं कि ये जो सन्यासी है सेंटिमेंटल है, सिद्धांत को समझने का प्रयास नहीं करता, अनपढ़ है, और दूसरे सेंटिमेंटलिस्ट के साथ मिलकर नाचता है और गाता है। खैर महाप्रभु की वो निंदा कर रहे थे, भक्तों को यह सहना बड़ा कठिन था, पर महाप्रभु ने सह लिया। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। भक्त जो है अपने अपमान को सह लेता है, पर जब किसी और का अपमान हो, किसी और भक्त का या गुरु का, उसको नहीं सह सकता। यहां हमारे समक्ष महाप्रभु का उदाहरण है। जब इन भक्तों ने कहा महाप्रभु से कि ये जो मायावादी सन्यासी हैं, ये आपकी निंदा करते रहते हैं, महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, हंस लिया। केवल हंसने लगे। पर जब महाप्रभु को सूचना मिली थी कि नित्यानंद पर अत्याचार हुआ है, वो तुरंत पहुंचे अपने सुदर्शन चक्र के साथ। तो महाप्रभु ने सह लिया जब भक्तों ने कहा कि आपकी ये हंसी उड़ा रहे हैं, बेइज्जती करते हैं। महाप्रभु हंसने लगे। पर जब महाप्रभु लौटे वाराणसी से, वृंदावन से वाराणसी में रुके लौटते होकर, तो एक भक्त चंद्रशेखर के घर में निवास कर रहे थे। चंद्रशेखर वैसे तो नीची जाति के थे, और अक्सर ब्राह्मण नीची जाति के घर में नहीं रहते थे प्राचीन समय में। पर महाप्रभु ने इस विषय की चर्चा नहीं की, क्योंकि चंद्रशेखर ऊंचे कोटि के भक्त भी थे। तो तपन मिश्रा और दूसरे भक्त आए ये कहते हुए कि मायावादी सन्यासी आपकी बहुत निंदा कर रहे हैं, और हमारी इच्छा है कि आप उनसे मिलिए। तो एक जो महाप्रभु के ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने मायावादी सन्यासियों को निमंत्रण दिया था उनमें घर में आकर भोजन खाने के लिए, और उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु जी भी वहां प्रवेश करें और महाप्रभु उनके सामने आएंगे। तो इस भक्त में पूरा विश्वास था कि उनको वो प्रभावित कर देंगे हरि नाम के प्रति। तो वो ब्राह्मण आया महाप्रभु को मिलने, और महाप्रभु से ये कहा कि मैंने इन मायावादी सन्यासियों को अपने घर में निमंत्रण दिया है। मैं जानता हूं कि आप मायावादी सन्यासियों को नहीं मिलते, पर आइए, जो वो आलोचना करते रहते हैं उसको मैं रोकना चाहता हूं। तो महाप्रभु गए इस ब्राह्मण के घर में। जब महाप्रभु इस ब्राह्मण के घर में पहुंचे, तो ये जो मायावादी सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती, उनके 10,000 शिष्य, ये बैठे हुए थे एक ऊंचे मंच पर। और महाप्रभु जब आए उस सभा में, तो पहले तो उन्होंने अपने पैरों को धोया, क्योंकि जैसे हर मंदिर में यह सुविधा होती है पैरों को धोने के लिए। फिर महाप्रभु पैरों को धोकर उसी स्थान में बैठ गए जो गंदा था स्थान, वो नीचा था। जो मायावती सन्यासी थे ये ऊंचे स्थान में बैठे थे। तो महाप्रभु ने यहां अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। हालांकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, हालांकि उन्होंने कभी यह घोषित नहीं किया कि स्वयं भगवान है, पर अनेक स्थानों में उन्होंने अद्भुत लीला भी प्रकट की, जिसका दर्शन केवल उनके प्रिय भक्तों को ही प्राप्त हुआ था। तो महाप्रभु गए और बैठे उस स्थान में जहां पैर धोते हैं, बाकी भक्त ऊंचे स्थान में बैठे थे। तो महाप्रभु ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। क्या लीला प्रकट की? उनके चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी जैसे कि लाखों सूर्य की रोशनी निकलती है। तो जब इन मायावादी सन्यासियों ने देखा कि महाप्रभु के चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही है, तो वो समझ पाए ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान होगा। और वो सारे के सारे खड़े हो गए आदर देने के लिए। महाप्रभु जब वो सभा में पहुंचे थे, उन्होंने अपने पैरों को धोया और जो मायावादी सन्यासी थे उन्हें प्रणाम किया। महाप्रभु ने सदा विनम्रता का भाव अपने आचरण में प्रकट किया था, तो महाप्रभु ने उन्हें प्रणाम किया और महाप्रभु ने उनको पूरा आदर दिया। तो जब इन्होंने देखा कि उनके चेहरे से लाखों सूर्य की रोशनी प्रकट हो रही है, तो वो इस सन्यासी समझ गए कि ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं। सब खड़े हो गए और प्रकाशानंद सरस्वती खुद नीचे आए और महाप्रभु के हाथ को पकड़कर उन्हें मंच के ऊपर ले गए जहां कि दूसरे सन्यासी बैठे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में क्या, ज्ञाता सुकृति, ज्ञाता सुकृति, ज्ञाता सुकृति का अर्थ है आप कोई सेवा कर रहे हो, ये जानते हो कि इस सेवा के बदले में मुझे ये लाभ मिलेगा। जैसे आप मंदिर में आते हो, दान देते हो, प्रणाम करते हो, आपको पता है इससे हमें लाभ मिलेगा। फिर एक और शब्द है अज्ञाता सुकृति। जब आप सेवा कर रहे हो पर आप ये नहीं जानते इसके बदले में आपको लाभ मिलेगा। जैसे पश्चिम देशों में हमारे भक्त ग्रंथों के वितरण की सेवा में जाते हैं। भारत में तो सबको पता है, लगभग सब हिंदुओं को, कि अगर हम गीता लेंगे, भागवत लेंगे तो इसके बदले में कुछ लाभ मिलेगा, ये शुभ कार्य है। पर पश्चिम देशों में तो लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है। जब भी वो ग्रंथ लेते हैं किसी न किसी भाव से तो उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं हंसते हुए हरे कृष्णा, तो किसी प्रकार से हरे कृष्णा का उच्चारण किया, इससे उन्हें लाभ है। तो प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को उनके हाथों को पकड़कर उन्हें ऊपर ले गए बिठाने के लिए और वहां उनकी चर्चा हुई। प्रकाशानंद सरस्वती ने 10,500 सन्यासी के समक्ष कहा, आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, आप क्या पागलों जैसे नाचते हो गाते हो, अब आप बैठिए हमारे साथ वेदांत सूत्र का अध्ययन कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा बड़ी विनम्रता से, मेरे गुरु ने देखा और कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हारे में खास योग्यता नहीं है, तुम्हारे में केवल एक ही कार्य की योग्यता है, वो क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का पूजा। तुम वेदांत सूत्र पढ़ने के योग्य भी नहीं हो, आखिर वैदिक शास्त्रों का निर्णय क्या है, अब भागवतम पढ़ो, वेदांत सूत्र पढ़ो, वैदिक शास्त्रों का निर्णय यह है कि हमें भक्ति योग में जुड़ना चाहिए। और भक्ति योग कैसे आरंभ होता है, श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। इसीलिए वैदिक शास्त्रों का निर्णय यह है कि भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा भक्ति योग के मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस और आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ने एक और मंत्र मुझे दिया, उन्होंने कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्ते व नस्ते नस्ते एव कति नन्दा, हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में। तो जब मायावादी सन्यासियों ने ये सब व्याख्या सुनी महाप्रभु जी के द्वारा, तो वो समझ गए कि स्वयं भगवान है और सारे भक्त क्या बन गए, वैष्णव बन गए। फिर इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, बुद्धिस्टों को उन्होंने प्रभावित किया, मायावादियों को जोड़ा वैष्णव सिद्धांत के साथ, और फिर सर्वभौम भट्टाचार्य को कहने लगे, अब मैं दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता हूं। महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा 1510 में की थी, और ये दक्षिण भारत की यात्रा 4000 मील की थी, 4000 मील। तो महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि मैं जाना चाहता हूं दक्षिण भारत की यात्रा में। सर्वभौम भट्टाचार्य, जैसे आपको कल समझाया था, आरंभ में तो ऊंचे कोटि के मायावादी थे, पर महाप्रभु जी की कृपा से बन गए क्या? वैष्णव, परम वैष्णव। तो महाप्रभु ने वैष्णव सर्वभौमाचार्य से कहा, अब मुझे दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करनी है। सर्वभौमाचार्य ने कहा, इतनी जल्दी मत जाओ, दिल हमारा टूट जाएगा, 5 दिन और रुक जाओ। तो महाप्रभु भक्तों को खुश करने के लिए 5 दिन और रुक गए, और फिर उन्होंने अपने दक्षिण भारत की यात्रा की। जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन लेने के लिए, और महाप्रभु को हरि नाम को उच्चारण करते हुए देखकर ये सारे लोग प्रभावित हो जाते थे किसके साथ? हरि नाम के प्रति। और जब ये लोग वापस लौटते थे अपने स्थानों में, तो दूसरे भक्त इनका हरि नाम सुनकर वो भी हरि नाम आरंभ कर देते थे। इस प्रकार पूरी दक्षिण भारत की प्रजा क्या बन गई थी? वैष्णव बन गई। आज अगर आप दक्षिण भारत में जाओ तो आप कोने कोने में देखोगे चर्च और मस्जिद, मंदिर बड़ी मुश्किल से देखेगा। केरला में जाओगे तो हर 5 मिनट की दूरी पर एक चर्च है, और मंदिर मिलेंगे आपको 6 घंटे की दूरी पर। पर चैतन्य महाप्रभु की है समय पूरा दक्षिण भारत का समाज वैष्णव बन गया था। तो चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में निवास कर रहे थे। कुर्मा ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया, और कुर्मा ब्राह्मण ने कहा, मेरा क्या सौभाग्य है कि मेरे घर में आप आए हो रहने के लिए, उनके चरण धोए। फिर कुर्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपके साथ यात्रा में जाना चाहता हूं घर छोड़कर। वो गृहस्थ थे, पत्नी थी, बच्चे थे। महाप्रभु ने कहा घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम क्या करो, हरि नाम का उच्चारण करो, गीता भागवत का अध्ययन करो, साधु संगत में रहो, भगवान के आर्चर विग्रह का उपासना करो। क्या कहा? पहला आदेश था हरि नाम का उच्चारण, दूसरा था क्या? भगवत गीता का अध्ययन, तीसरा था क्या? साधु संग में रहो, और चौथा था क्या? भगवान के आर्चर विग्रह। आज जब विग्रह करता भगवान जब अपने आप को मूर्ति के रूप में प्रकट करते हैं। और पांचवा भी एक था, वो था धाम में रहो, धामवास। और फिर महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये जो संदेश महाप्रभु ने दिया कुर्मा ब्राह्मण को, ये हम सबके लिए है कि अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम सदा महाप्रभु की संगत में रहेंगे। जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो एक भक्त थे वहां जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी, उनका पूरा शरीर फस फस से भरा हुआ था, और उनके पूरे शरीर में फुंसियां थी और शरीर से इतनी बदबू आती थी कि अगर वो सड़क के बाएं तरफ में चल रहे होते थे सब दाहिने तरफ हो जाते थे। और उनमें इतनी दया की भावना थी, अगर कोई कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिरता था उसे उठाकर जोड़ देते थे शरीर के साथ। अंदाजा लगाओ, पूरा शरीर कीड़ों से भरा हुआ था, फुंसियों से भरा हुआ था, फुंसियों में पस थी, और जब कोई कीड़ा नीचे गिरता था उठाकर वापस जोड़ देते थे। ऐसा था भाव। महाप्रभु को मिलने आए थे जो महाप्रभु कुर्मा ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे, पर महाप्रभु चल पड़े थे जब इन्हें सूचना मिली कि महाप्रभु शहर में है, तो भागे भागे आए महाप्रभु को मिलने के लिए, पर महाप्रभु को मिल नहीं पाए क्योंकि महाप्रभु चल पड़े थे। और फिर दुखी होकर शोक में वो गिर गए, बेहोश हो गए लगभग। तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं और भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान को पता लग गया कि मेरा प्रिय भक्त खुरमा मुझे मिलने आया है, और क्योंकि मिल नहीं पाया तो बेहोश हो गया। तो महाप्रभु लौटे और लौटते ही उसे गले लगाया। जैसे गले लगाया तुरंत ही उनकी जो बीमारी थी समाप्त हो गई। जो बदसूरत शरीर था खूबसूरत शरीर बन गया और बूढ़े की वजह युवक बन गए, और पस वस सब समाप्त हो गया और बदबू की वजह खुशबू आने लगी शरीर से। तो महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं, उनमें एक लीला यह है किस प्रकार उन्होंने इस पतित व्यक्ति का उद्धार किया, किस प्रकार इस बदसूरत व्यक्ति को खूबसूरत बना दिया, यह भी उनकी अद्भुत लीला है। तो फिर इस वासुदेव के मन में यह भाव हुआ, ये इच्छा उसने पूछा, पहले तो मैं इतना रोगी था कि कोई मेरे निकट आता भी नहीं था, अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं, कहीं मेरे मन में घमंड गौरव नहीं आ जाए, क्योंकि अक्सर आप देखते हो अगर कोई धनी बन जाए, खूबसूरत हो, प्रसिद्ध स्थिति में हो तो हम घमंडी बन जाते हैं ना। इसलिए कहा गया है धन सुंदरता भौतिक शिक्षा ये शत्रु हैं, अगर इनका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं किया जाए। तो वासुदेव का यह प्रश्न था कि मेरे में विनम्रता का भाव कैसे रहे। तो महाप्रभु ने कहा हरि नाम का उच्चारण करो और सदा हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, इस प्रकार तुम्हारे में सदा विनम्रता का भाव रहेगा। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे कि इस वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ, उसी प्रकार इस संस्था के भक्तों का उद्धार हुआ है। और सबको क्या करना चाहिए, हरि नाम का उच्चारण, हरि नाम की महिमा का प्रचार, इस प्रकार सबका क्या होगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पूरे समाज को प्रभावित किया। जब चैतन्य महाप्रभु निकल रहे थे सर्वभौम भट्टाचार्य के घर से, तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें ये सूचना दी कि दक्षिण भारत की यात्रा में आप एक बड़े प्रसिद्ध भक्त से मिलोगे जिनका नाम है रामानंद रॉय। रामानंद रॉय को विशाखा का अवतार माना जाता है और उन्हें कई बार अर्जुन का अवतार भी माना जाता है। और उस समय उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र, जो उड़ीसा के भी राजा थे और दक्षिण था मद्रास के भी। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दी थी कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा करोगे तो वहां आपको एक भक्त मिलेगा जिसका नाम है रामनंदन रॉय। तो महाप्रभु जब मिले उन्हें गोदावरी के तट पर, जब महाप्रभु गोदावरी के तट पर पहुंचे तो रामनंदन रॉय को पलकी में उठाकर 100 सेवक सहयोग कर रहे थे। तो महाप्रभु समझ गए यही होगा वो रामनंदन रॉय, और फिर उनकी बड़ी सुंदर चर्चा हुई। महाप्रभु ने उनसे पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और चर्चा के दौरान महाप्रभु ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे। आप कहोगे भगवान ने अपने भक्त से प्रश्न पूछे, कैसे? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे भीष्म देव शरीर त्याग रहे थे और भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा पूछो उनसे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान ने रामनंदन रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। अगर भगवान चाहते तो जगाए मदाए का उद्धार कर सकते थे, पर उन्होंने ये कार्य किसको सौंपा? भगवान चाहते तो पूरे विश्व में हरि नाम पहुंचा सकते थे, पर उन्होंने यह जिम्मेदारी सौंपी किसे? श्री प्रभु को। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं, और भक्त उसका भी प्रयास रहता है भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए। तो महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे रामनंद रॉय से। एक प्रश्न ये पूछा, हमें कौन सा गीत गाना चाहिए सदा? और रामनंद रॉय ने कहा आपको सदा वो गीत गाना चाहिए जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान हो, और कौन सा वो गीत है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से आप क्या राधा और कृष्ण दोनों का गुणगान कर रहे हो। फिर महाप्रभु ने पूछा, अनेक प्रश्न पूछे, मैं कह रही हूं कि हमें आगे उन्होंने पूछा हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए। जैसे आप शास्त्र में पढ़ते हो भगवान कहते हैं मन मन भावा मन भक्तो मन या जी मन नमस्कारो मामे वाचि सत्यम ते प्रतिजने प्रियोशी में। तो भगवान ने पूछा किस विषय का चिंतन करना चाहिए, पर रामनंदन रॉय ने कहा हमें भगवान के नामों का, लीलाओं का, गुणों का, रूप का चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे, और यही रामनंदन रॉय फिर उन्होंने अपने सरकारी नौकरी त्यागी और आए उड़ीसा में महाप्रभु की सेवा में जुड़ने के लिए। एक राजा थे उड़ीसा के जिनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। राजा थे वे साथ में ऊंचे कोटि के भक्त भी थे। उन्होंने प्रयास किया था कि किसी प्रकार से उन्हें महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो, और महाप्रभु इनकार करते गए उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए। तो रथ यात्रा के समय महाप्रभु ने देखा कि ये राजा बड़ी विनम्रता की सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? झाड़ू से पूरे रास्ते को साफ कर रहा है, जिस रास्ते में भगवान का रथ निकलेगा उसके साथ उस पूरे रास्ते को गुलाब के पानी से धोड़ा भी है। तो महाप्रभु ने देखा कि ये राजा है, पर जब भी इतनी विनम्रता की सेवा कर रहा है तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। और यहां रथ यात्रा के समय महाप्रभु ने एक और अद्भुत लीला प्रकट की। महाप्रभु हर कीर्तन मंडली के हर रथ के साथ सात कीर्तन मंडलियों को जोड़ रहे थे। चार कीर्तन मंडलियां होती थी रथ के आगे, एक रथ के बाएं तरफ, एक रथ के दाहिने तरफ और एक रथ के पीछे। और महाप्रभु चार मृदंगा बजाने वाले हर पार्टी के साथ जोड़ते थे, तो क्योंकि साउंड सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं। सात कीर्तन पार्टी हर रात के साथ। और महाप्रभु ने अपना एक खास अद्भुत लीला प्रकट की। महाप्रभु ने अपना विस्तार करके सात के सात कीर्तन मंडलियों में उपस्थित थे। और हर कीर्तन मंडली सोच रही थी, मेरा क्या सौभाग्य है चैतन्य महाप्रभु हमारे कीर्तन मंडली में है। पर जो उनके प्रिय भक्त थे महाराज प्रतपूजा और कुछ और, उनका महाप्रभु ने खास नेत्र दिए जिसके द्वारा वो देख सके क्या कि महाप्रभु स्वयं प्रकट हैं पांच के पांच सात सात के साथ कीर्तन मंडली। तो महाप्रभु ने इस प्रकार अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। महाप्रभु ने रथ यात्रा उत्सव को बड़ा महत्व दिया। वैसे तो उन्होंने अपने भक्तों का आदेश दिया था क्या, जारे ताको ताय कहो कृष्ण, पर रथ यात्रा के समय सारे भक्त आते थे और महाप्रभु बड़े उत्साह से नाचते थे गाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, भगवान के अनेक लीलाएं हैं, साधन का सिद्धांत है। रूप और सनातन उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य में बड़ी जिम्मेदारी की नौकरी कर रहे थे, लगभग प्रधानमंत्री जैसे। पर दोनों ने नौकरी त्यागी। रूप गोस्वामी ने क्या कहा, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम कृष्ण चैतन्य नाम ने कर चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए रूप और सनातन गए। घास के पत्ते को भूमि में रख कर उन्होंने कहा, खेया में समाज में लोग कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, पर हम यही नहीं जानते कि हम हैं कौन, हमें ये बताइए कि हम हैं कौन। ये था उनका प्रश्न। तो रूप और सनातन, पहले तो रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी और फिर थोड़ी देर बाद सनातन। सनातन गोस्वामी ने जब नौकरी त्यागी तो राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया था। पहले तो सनातन गोस्वामी ने सूचना भेजी कि मैं बीमार हूं, पर वो 30 ब्राह्मणों को बिठाकर भागवत का अध्ययन कर रहे थे। तो जब राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा देखने के लिए कितनी गहरी बीमारी है, डॉक्टर ने कहा, नहीं जी वो तो बिल्कुल ठीक दिखते हैं, वो तो भागवत पढ़ रहे हैं। तो राजा ने उनको निमंत्रण दिया और सनातन गोस्वामी गए। सनातन गोस्वामी ने आदर दिया राजा को। राजा ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को संभालो, तुम्हारा भाई लापरवाह बन के उसने अपनी नौकरी त्याग दी। तो सनातन ने कहा कि अब तो मेरे से काम नहीं होगा। और फिर राजा ने सनातन को जेल में डाल दिया। और जब वो जेल में थे तो सनातन को सूचना मिली क्योंकि भाई ने थोड़ा धन रखा है एक बनिए की दुकान में। रूप गोस्वामी ने जब अपनी सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास इतना धन था कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। और उन्होंने 50% बांटा किसे? ब्राह्मणों को, 25% बांटा रिश्तेदारों को, और 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। तो सनातन गोस्वामी को एक पत्र प्राप्त हुआ था कि उन्होंने धन रखा हुआ है किसी व्यापारी के पास, तो इस धन के सहयोग से वो निकले और चैतन्य महाप्रभु ने इन भाइयों को भक्ति संबंधित शिक्षा दी थी, जो कि सनातन गोस्वामी ने उसकी चर्चा की है कहाँ, हरि भक्ति विलास में। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन गोस्वामियों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और कहा कि ब्रज में जाकर उन स्थानों को खोजो जहां की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की है, साथ में भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो। और इन गोस्वामियों ने महाप्रभु के सिद्धांत पर निर्भर हमें बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जो हम अनेक ग्रंथों में प्राप्त करते हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए थे, उसकी खुशी में जगन्नाथ मिश्रा ने आज के दिन बड़ा भंडारा किया, इसलिए उसे कहा जाता है जगन्नाथ मिश्रा उत्सव। और आज यहां भी भंडारा किया जाए 9:30 बजे, ओ फिर आपका प्रसाद का टाइम हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए क्या कहा, ब्रह्मंड ब्रह्मीद कुनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वह भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या भक्ति का बीज मिला है। तो आप सब जो जुड़े हो भक्ति में बड़े सौभाग्यशाली हो। ये भक्ति का बीज हमें कैसे प्राप्त होता है, ग्रंथों के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से? कभी कोई ग्रंथ हमें देता है जिसके द्वारा हमें दिव्य ज्ञान मिलता है, या कोई भक्तों की संगत मिलती है। तो ये भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, पर इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीज को जल पिलाना पड़ेगा। और ये है शरणम कीर्तनम के माध्यम से, हरि नाम का उच्चारण करेंगे उससे भक्ति का उत्साह बढ़ेगा और अनर्थ निवृत्ति प्राप्त होगी। और आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये जो भक्ति का सुंदर बगीचा है ये नष्ट हो सकता है अगर आप क्या करो, हाँ, और इसकी तुलना महाप्रभु ने किया एक पागल हाथी के साथ। अगर पागल हाथी को एक सुंदर बगीचे में छोड़ दोगे तो सुंदर बगीचा खराब हो जाएगा, तो हमें वैष्णव अपराध से बचना जाएगा। आगे महाप्रभु ने कहा, हमें सदा भक्तों की संगत में रहने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र का है लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है, सत्संग त्याग वैष्णव झड़ा। भौतिकवादी की संगत उतना ही ग्रहण करो जितना की आवश्यक है, उसे अधिक कहां रहो भक्तों की संगत में। तो चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाता है, उनकी कृपा के बिना सरल कार्य कठिन, उनकी कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं पहाड़ों के पार जा सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। दूसरे शब्दों में उनकी कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाता है, और उनकी कृपा के बिना कठिन कार्य सरल कार्य कठिन हो जाता है। तो आप सब चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत होइए। सब अवतार हमें अत्यंत दयालु अवतार हैं। जब कोई कहता भी था कि आप स्वयं भगवान हो, महाप्रभु अपने कानों को बंद करके क्या कहते थे, तो महाप्रभु भगवान हैं पर प्रकट हुए भक्त के रूप में। और जगन्नाथ मिश्रा कौन है? नंद महाराज के अवतार है। और सच्ची माता कौन है? यशोदा माता के अवतार। तो भगवान प्रकट होते हैं अपने सनातन साथियों के साथ, और भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनके विषय में आप चैतन्य चैतन्यता, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। चैतन्य भागवत की रचना की है वृंदावन दास ठाकुर ने, चैतन्य मंगल की रचना की है लोचन दास ठाकुर ने, और चैतन्य चतुर्मिता की रचना की है कृष्ण। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चतुर्मिता का अनुवाद किया क्योंकि उसमें एक बड़ा गहरा सिद्धांत है, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम सिद्धांत भी समझें और लीलाओं में भी रुचि में। आप सबसे यही निवेदन है, प्रार्थना कीजिए कि हरि नाम में रुचि बढ़े। महाप्रभु से ये प्रार्थना करो क्योंकि कृपा प्राप्त हो कि हरि नाम में रुचि बढ़े और आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सको। और आप सब चैतन्य चतुर्मिता पढ़ने की कोशिश करो। यही चैतन्य चतुर्मिता का सार प्रकट हुआ है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य के रूप में। तो टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य एक छोटा ग्रंथ है 300 पेजेस का, जिसमें प्रभुपाद जी ने पूरे चैतन्य चतुर्मिता का सार दिया है। उसको पढ़िए। आप ऐसे कितने भक्तों ने टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य को पढ़ा है? अच्छा, और कितने भक्तों के घरों में चैतन्य चतुर्मिता की कॉपी है? हाँ, तो आप लोग चैतन्य चतुर्मिता भी पढ़िए और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की गौरंग 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 जगन्नाथ मिश्र की सच्ची माता की हरे कृष्ण।
Okay.